ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात कनाडा के कनानास्किस शहर में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश के भविष्य पर G7 चर्चाओं में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में श्री मोदी की ये लगातार छठी भागीदारी होगी। वे G7 नेताओं और अन्य आमंत्रित देशों के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे शिखर सम्मेलन से अलग कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक भी शामिल है। G7 देशों के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। G7 देशों ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उधर ईरान ने G7 देशों पर इसराइल का साथ देने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने इसराइल ईरान संघर्ष पर G7 के संयुक्त बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें इसराइल की आक्रामकता, परमाणु स्थलों पर गैरकानूनी हमले और ईरानी नागरिकों की हत्या को अनदेखी की गई है। ईरान और इसराइल आज लगातार पांचवें दिन भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दोनों देशों में फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में नागरिकों को हमला का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल की सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर कई बड़े हमले किए। इसराइल की सेना ने दावा किया कि उसने रात भर के हमले में ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी सहयोगी अली शादमनी को मार गिराया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने घोषणा की कि उसने तेल अवीव में इजरायली खुफिया केंद्रों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। इनमें मोसाद ऑपरेशनल सेंटर भी शामिल है। इसी से संबंधित घटनाक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और क्रोएशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान राजनीतिक और कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाग्रेब में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए क्रोएशिया में भारतीय राजदूत अरुण गोयल ने कहा कि ये यात्रा प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत है।
Visit by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is a huge thing because it's putting Croatia on the global map. So this is a first visit to Balkans that now India is focusing on Balkans in its foreign policy. So the whole region gets a big boost.
भारत तपेदिक रोग यानी टीबी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विश्व की तुलना में इस रोग की घटनाएं कम हुई हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि देश में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है।
भारत के प्रयासों का असर ये हुआ है कि आज दुनिया से जब हम भारत की तुलना करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को देखते हुए, तो हमारे यहाँ टीबी के इंसिडेंस रेट में जो डिक्लाइन हुआ है वो कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ आज बड़ी तेजी से टीबी की मोर्टेलिटीज जो हैं वो घटी है और टीबी इंसिडेंस रेट 17.7% तक घटा है।
ICC एक दिवसीय बल्लेबाजी महिला रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 727 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं। 28 वर्षीय मंधाना ने नवंबर 2019 के बाद पहली बार रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। FIH हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारतीय महिला टीम को अर्जेंटीना से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारत का अगला मुकाबला कल फिर अर्जेंटीना से होगा। मौसम विभाग ने अगले 3-4 तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, नागालैंड में बिजली गिरने तथा गरज के साथ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।